मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 28 नवंबर 2019 है और आज के इस AFEIS के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज के मुख्य विषय के अंतर्गत में जो दो संघीय प्रदेशों का विलय करने का निर्णय लिया गया है उसके बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले जो दो इम्पॉर्टेंट खबरें हैं आइए उन पर हम नज़र डाल लेते हैं। और ये जो दोनों खबरें हैं ये प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी और मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और ये केवल सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि स्टेट सिविल सर्विसेज और दूसरी कोई भी ऐसी सर्विस जहां जनरल नॉलेज का पेपर होता है उनके लिए भी आप इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं। जो पहली खबर है मित्रों वो आपने न्यूज़ में भी सुनी और आज अखबारों में भी बहुत ही प्रोमिनेंटली इसका उल्लेख किया गया है, वो ये है कि हमने जो है अब कार्टोसेट 3 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है, इसरो ने किया है। कार्ट नाम आपका आपको याद रहना चाहिए, कार्टोसेट 3 सैटेलाइट। हालांकि इसके साथ ही साथ अमेरिका के जो 13 छोटे छोटे सैटेलाइट जिसे हम नैनो सैटेलाइट करते हैं वो भी लॉन्च किए गए हैं, लेकिन यहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कार्टोसेट 3 सैटेलाइट। अब आप देखिए कि जो कार्टोसेट 3 सैटेलाइट है इसे मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं। पहली बात तो यह है कि इस सैटेलाइट के लॉन्च होने से अब हमारी जो सेना है उसका जो सर्विलियंस पार्ट है यानी कि जो प्रहरी की जो उसकी भूमिका है वह और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इस सैटेलाइट में यह ताकत है कि यह ऊपर से पृथ्वी की छोटी छोटी गतिविधियों को भी देख सकता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर, आप सोच करके देखें, 25 सेंटीमीटर की वस्तु की तस्वीरें खींच सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर जमीन पर कोई गाड़ी चल रही है और उस गाड़ी को कोई ड्राइवर चला रहा है तो बकायदे वो ये पहचान लेगा कि कौन गाड़ी चला रहा है, इस गाड़ी का नंबर क्या है। अगर आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में हथियार है तो वो सारी चीजें उस सैटेलाइट से तस्वीर खींचकर आपके पास पहुंचा देगा, यानी कि सेना के पास पहुंचा देगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि भारत हमारी जो सीमा है खासकर जो उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत की सीमा है वो किस तरीके से केवल आतंकवादी गतिविधियों से ही परेशान नहीं है बल्कि मादक पदार्थों की तस्करी भी हो रही है, मानव तस्करी भी हो रही है, हथियारों की तस्करी हो रही है, ये सारी गतिविधियां वहां सबसे ज्यादा हो रही हैं और उसका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी वाला जो सिलेबस है वो इससे बहुत गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। तो आप सोच करके देखिए कि इस कार्टोसेट 3 के लॉन्च होने से अब कितनी अधिक मदद मिलेगी। दो तथ्य आप और याद रखें कि ये जो ऊंचाई है इसकी 509 किलोमीटर ऊपर यह सैटेलाइट स्थापित की गई है और इससे केवल यही नहीं कि सीमा पार की गतिविधियों की हमें जानकारी मिल पाएगी बल्कि इसका बहुत ही सकारात्मक दूसरा उपयोग भी हो सकेगा, जैसे हमारे यहाँ वाटर स्टोरेज की क्या स्थिति है, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर बनाने के लिए आप बकायदे मैप बना सकते हैं, सड़क नेटवर्क की निगरानी का काम आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी आपदा आ गई, उस आपदा से क्या प्रकृति पर बदलाव हुए हैं, कहाँ कौन सी चीज़ ढह गई है, प्राकृतिक धरातल में क्या क्या परिवर्तन आ गए हैं, कहाँ नई चीज़ बनी, कहाँ कोई चीज़ ध्वस्त हो गई, इन सब की तस्वीर आपको मिल जाएगी। तो कल्पना करके देखिए कि इससे कितना बड़ा फायदा देश को होगा। और यहाँ एक तथ्य ये भी शायद मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट हो सकती है कि इससे पहले जो अमेरिका की एक कंपनी है उसने एक सैटेलाइट छोड़ा है वर्ल्ड व्यू 3 और उसकी जो क्षमता है वो 31 सेंटीमीटर की वस्तु को देखने की है और इसकी जो क्षमता है कार्टोसेट 3 की वह है 25 सेंटीमीटर, यानी कि उससे भी अधिक उन्नत किस्म का सैटेलाइट यह है। तो मित्रों इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और इसे अच्छे से तैयार आप कर लेंगे। जो दूसरी घटना है वह है, आपने अखबारों में पढ़ा होगा हालांकि बहुत थोड़ी सी ही शायद आपको बातें पढ़ने को मिली होंगी, वो है जो हमारा 15वां वित्त आयोग है जो अभी काम कर रहा है उसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह जो हमारा 15वां वित्त आयोग है ये अक्टूबर 2020 तक अपनी रिपोर्ट देगा। कुछ चीजें देखिए मैं आपको एक दो बातें जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ वो बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो वित्त आयोग है, आपको मालूम है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब एक संवैधानिक संस्था है, और संविधान का जो हमारा अनुच्छेद 280 है वो बकायदे वित्त आयोग के गठन के बारे में निर्देश देता है। और ये बताया गया, साफ कहा गया है कि जब ये संविधान लागू हो जाएगा उसके 2 साल के अंदर राष्ट्रपति को वित्त आयोग का गठन करना होगा। इसमें एक उसके अध्यक्ष होंगे, 4 अन्य सदस्य होंगे, और इसका जो मुख्य काम होगा वित्त आयोग का, आप जानते हैं कि हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है, संघात्मक रूप है, केंद्र है और राज्य है, तो केंद्र और राज्यों के बीच में धन का बंटवारा किस तरीके से किया जाए इसके बारे में सिफारिश करेगा। तो अब आप देखिए कि जब धन का बंटवारा किस तरह से किया जाए, जब सिफारिश करते हैं तो किस वित्तीय वर्ष में लागू होता है। अक्सर जब स्टूडेंट से मेरी बात होती है तो वो कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे अभी हमारा 2019-2020 का वित्तीय वर्ष चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर है ना 2019-20, और आयोग कौन से नंबर का काम कर रहा है, 15वां आयोग काम कर रहा है। तो स्टूडेंट को लगता है कि अभी जो धन का बंटवारा हो रहा है, जैसे 42% अब स्टेट का शेयर कर दिया गया, इस पर सिविल सर्विस में एग्जाम भी पूछा गया था, प्री में, सिविल सर्विस प्री एग्जाम में इस पर प्रश्न भी पूछा गया था। तो अब आप देखिए कि स्टूडेंट को लगता है कि चूंकि 15वां वित्त आयोग काम कर रहा है तो यह 15वें वित्त आयोग की सिफारिश होगी। नहीं, अभी तो 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश दी ही नहीं है, तो उसकी सिफारिश कैसे हो सकती है। अभी जो बंटवारा हो रहा है वो 14वें वित्त आयोग के हिसाब से हो रहा है। तो अब आप देखिए कि 2020 अक्टूबर में ये 15वां वित्त आयोग अपनी सिफारिश दे देगा, तो इसके बाद से जो लागू होगा 2020 में ये देगा, तो 2020 का जो वित्तीय वर्ष है वो किस में चलता रहेगा, 14वें में चलता रहेगा। तो 2021-22 से जो वित्तीय वर्ष आएगा 5 वर्षों के लिए, वह फिर 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होगा। यहां मैं एक बात और बता दूं कि वित्त आयोग की सिफारिश को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। संविधान में लिखा गया है कि जो आयोग है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देंगे और राष्ट्रपति फिर उसे सदन के पटल पर रखेंगे, यानी कि फिर सरकार उसके बारे में निर्णय करेगी कि वो क्या सिफारिश के बारे में किनको मान रही है किनको नहीं मान रही है। यहां जो थोड़ा सा जो प्रश्न उठ रहा है, देखिए आगे अब हम लोग को इसके बारे में क्या पढ़ने को मिलता है, वो ये है कि 5 वर्ष के लिए इसका गठन होता है, संविधान में जो दिया गया है 5 वर्ष, अब उसका 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। दरअसल संविधान में इसके बारे में कुछ उल्लेख नहीं है, हालांकि एक शब्द उसमें दिया हुआ है और वो है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे 5वें वर्ष की समाप्ति पर, मतलब नए वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वतर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है। तो यहां जो पूर्वतर समय है उसका अंग्रेजी है सच अर्लियर टाइम, तो यहां तो अर्लियर टाइम नहीं है, यहां तो 1 साल अधिक किया गया है। तो अब देखिए कि इसको संवैधानिक रूप में किस तरीके से लिया जाता है, क्योंकि समय बढ़ाया गया है, समय कम नहीं किया गया है। यहां एक बात मैं आपसे और बताना चाहूंगा, जनरल स्टडीज प्री की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जैसे अभी हमारी जब सरकार जो अभी है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक आया आपको मालूम है, और आने के बाद फिर जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, लद्दाख यूटी बन गया, यूनियन टेरिटरी, और जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया विथ विधानसभा। तो सरकार ने इस वित्त आयोग से ये कहा है कि जो धन के बंटवारे के बारे में जो आप फार्मूला सुझाएंगे उसमें आप जम्मू कश्मीर के बारे में भी बताइए और उसे एक राज्य की तरह ही अभी ट्रीट कीजिए इस मायने में। अदरवाइज होता क्या है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको जो धन दिया जाता है वो केंद्र सरकार के ही पूल से दिया जाता है, यानी कि केंद्र सरकार का को जितना पैसा मिलता है उसी में से केंद्र शासित प्रदेशों को दे दिया जाता है, जैसे लद्दाख को उसमें से दे दिया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में सरकार ने वित्त आयोग से अलग से ये अनुरोध किया है कि आप इसे कितना धन दिया जाए इसके बारे में हमें सुझाएं। तो दोस्तों ये वित्त आयोग के बारे में जानकारी थी, ये 2 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण रही हैं और इनके बारे में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह है 2 संघीय प्रदेशों का विलय, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस पर विधेयक पारित किया गया है जिसके तहत दमन दीव और दादर एवं नगर हवेली के विलय की बात कही गई है। दोस्तों, मैं इसको प्री एग्जाम की दृष्टि से आपके सामने रखना चाहूंगा। ये बहुत उपयुक्त समय है जबकि आप मैप में इन दोनों स्थानों को लोकेट करें। मैं अब एक एक को लेकर के चल रहा हूं, दमन और दीव। किसी समय आपने पढ़ा होगा गोवा, दमन और दीव, पहले एक ही नाम था। 1961 में आपको मालूम है कि गोवा दमन दीव पर पुर्तगाल का शासन था और ठीक इसी तरह से दादर नगर हवेली पर भी। तो 1961 में गोवा भारत में मिला और इसके बाद उस समय गोवा भी यूटी था, यूनियन टेरिटरी था, लेकिन बाद में जब 1987 में गोवा को इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दे दिया गया तो दमन दीव को उससे अलग करके केंद्र शासित प्रदेश ज्यों का त्यों रहने दिया गया। यह आपको मालूम होना चाहिए, दमन दीव। आप मैप में जाकर के देखेंगे तो दमन दीव और दादर एवं नगर हवेली आपको बहुत पास पास दिखाई देंगे, ज्यादा दूर नहीं है। दोनों अरब सागर में स्थित हैं और नक्शे में आप देखेंगे कि जहां महाराष्ट्र शुरू होता है, आप कह लीजिए वेस्ट कोस्ट पर देखिए, और गुजरात के दक्षिण भाग में आप देखिए, तो ये दोनों आपको दिखाई दे जाएंगे। तो जो दमन दीव है, पंजिम इसकी राजधानी है, और जो दीव है उससे गुजरात का जूनागढ़ बहुत नजदीक है, जूनागढ़ जो जिला है, और जो दमन है उससे गुजरात का वलसाड़ जिला मिलता है, मतलब उनकी बॉर्डर है, आप एक तरीके से कह लीजिए। ये सब बातें आपके ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि सिविल सर्विस में अगर प्रश्न पूछा जाएंगे तो इसी तरह से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हमारा सबसे छोटा है और केवल 2.5 लाख की आबादी है यहाँ की, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 112 किलोमीटर। देखिए 112 किलोमीटर क्षेत्रफल कुछ भी नहीं होता है। ठीक, अब हम आते हैं दादर एवं नगर हवेली। 1961 में ही जब गोवा का वो हुआ, मिलन हुआ था, उसी समय से इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। दादर नगर हवेली को भी आप देखेंगे तो वो बिल्कुल वहीं पर आपको मिलेगा जहां गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर आपको दादर एवं नगर हवेली आपको मिलेंगे। और ये जो है, इसकी जो राजधानी है दोस्तों, वह है सिलवासा। राजधानी आपको मालूम होना चाहिए, सिलवासा। इसकी आबादी 3.5 लाख है और जो स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र है 491, यानी कि आप मोटे तौर पर कह लीजिए 500 किलोमीटर। तो अब आप वर्ग किलोमीटर, तो अब आप देखिए कि इन दोनों को मिला दीजिए तो 500 वर्ग किलोमीटर वो हो गया और 100 वर्ग किलोमीटर तो 600 वर्ग किलोमीटर। अगर 600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है तो 20x30 कह लीजिए, यानी कि 20 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर लंबा, मोटे तौर पर बता रहा हूं। तो आप सोच करके देखिए 20x30 का जो शहर होगा वो कितना बड़ा होगा, छोटा सा होगा। तो सरकार ने यही कहा है कि जो हमने इसके विलय का निर्णय लिया है वो इसलिए कि यहां प्रशासकीय व्यवस्था अच्छे हो सके, खर्च कम हो सके और यहाँ के लोगों को हम अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। देखिए जो यूनियन टेरिटरी बनाए गए हैं उनके पीछे एक सिद्धांत रहा है, या तो हम रक्षा सुरक्षा की दृष्टि से, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, जैसे अभी लद्दाख, जम्मू कश्मीर या अंडमान निकोबार राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए हैं, कुछ को सांस्कृतिक दृष्टि से भी, जैसे शुरू में जब गोवा को बनाया गया या पुद्दुचेरी को बनाया गया तो चूंकि वहां की संस्कृति अलग थी उसकी रक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा हो, तो इसलिए उनको यूटी वन बना दिया गया। प्रशासकीय दृष्टि से भी ऐसा किया जाता है, जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, तो यहां जो व्यवस्था की गई है दोनों के विलय की वो बेसिकली प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से की गई है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, अलका चंदर पंजाब से, मधु मिश्रा देवरिया उत्तर प्रदेश से, अनूप राज, आयुष मिश्रा, खालिद अली खान, चारू सिंह और प्रणव द्विवेदी बलरामपुर उत्तर प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।